भजन संहिता 16। आज हम भजन संहिता 16 का अध्ययन करेंगे, अतः भजन 16 खोले। ये भजन दाऊद का मिकताम कहलाता है। मिकताम का अर्थ है परमेश्वर का ध्यान करना या प्रार्थना करना है। यहां 5 या 6 भजन ऐसे हैं जो मिकताम कहलाते हैं, जैसे भजन 16, 56, 57, 58, 59 और 60 भजन है। इन भजनों में दाऊद ने प्रभु से प्रार्थना की है। भजन 16:1, हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूं। ये रक्षा की प्रार्थना है। मेरे विचार में दाऊद के विरोधी उसके पूरे जीवन में उसके लिए सरदर्द बने हुए थे, जबकि कभी कभी तो कारण कुछ भी नहीं होता था। शौल ने दाऊद को नष्ट करना चाहा। उसके पुत्र अबशलोम ने भी बाद में उसके विरुद्ध विद्रोह किया। दाऊद लोकप्रिय राजा था। ये देखा गया है कि अनेक व्यक्तियों में से किसी एक व्यक्ति में मित्र बनाने की क्षमता होती है, लेकिन कुछ लोग आपके शत्रु बन जाते हैं क्योंकि आपके पास बहुत मित्र हैं। उन्हें आपसे बहुत जलन होती है। दाऊद एक रूपवान जवान था। उसकी देह खिलाड़ियों के जैसे थी। उसका व्यक्तित्व प्रभावशाली था। इन सब गुणों के कारण उसे ईर्ष्या रखने वाले लोग भी थे, जिन्होंने उसे परेशान कर रखा था। वो उनसे बचना चाहता था, इसलिए उसने ये प्रार्थना की, हे ईश्वर मेरी रक्षा कर, क्योंकि मैं तेरा ही शरणागत हूं। भजन 16:2, मैंने परमेश्वर से कहा है कि तू ही मेरा प्रभु है। यदि हम इब्रानी में इसका ज्यों का त्यों अनुवाद करें तो अनुवाद इस प्रकार होगा, तूने परमेश्वर से कहा है कि तू ही मेरा प्रभु है। फिर से प्रभु शब्द 2 रूपों में लिखा है। पहला परमेश्वर का नाम है और दूसरा उसकी उपाधि है, जिसके द्वारा मैं उसके साथ अपना संबंध दर्शाता हूं। तू ही मेरा प्रभु है, अर्थात मेरा स्वामी, मेरा पालनहार है। भजन 16:2 के अंत में लिखा है, तेरे सिवाय मेरी भलाई कहीं नहीं। इसका असली तात्पर्य यह है कि प्रभु जो कुछ मुझमें अच्छा है वो परमेश्वर से ही है, और उसके बिना मुझमें कुछ भी भलाई नहीं। पौलुस कोरिंथियों की पुस्तक में हमें कहता है, 1 कोरिंथियों 4:7, क्योंकि तुझ में और दूसरे में कौन भेद करता है, और तेरे पास क्या है जो तूने नहीं पाया, और जबकि तूने दूसरे से पाया है तो ऐसा घमंड क्यों करता है कि मानो नहीं पाया। यदि मेरे जीवन में कुछ भलाई है तो वो मेरे जीवन में किए परमेश्वर के कार्यों के परिणाम है। मैं गर्व नहीं कर सकता, ना ही बड़े बोल बोल सकता, क्योंकि मेरी धार्मिकता परमेश्वर का वरदान है जो यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मुझे प्राप्त है। मेरे प्रभु तेरे सिवाय मेरी भलाई नहीं है। हम सब वास्तव में एक ऐसी सच्चाई से सहमत है। यहां दाऊद उनके बारे में कहता है जो अन्य देवताओं की उपासना करते हैं। भजन 16:4, जो पराए देवता के पीछे भागते हैं उनका दुख बढ़ जाएगा। मैं उनके लहू वाले तपावन नहीं तपाऊंगा और उनका नाम अपने होंठों से नहीं लूंगा। मैं अन्य देवताओं के नाम अपने होंठों से नहीं लूंगा और ना उनके लहू वाला चढ़ावा पीऊंगा। यही तो परमेश्वर ने व्यवस्था में निश्चित किया था जब उसने कहा, तुम ना तो लहू को खाना और ना पीना। परमेश्वर अन्य जातियों के बलिदान के संदर्भ में ऐसा कह रहा था। जब वे अपने देवताओं को पशु का बलिदान चढ़ाएंगे और पशुओं का लहू पिएंगे कि मानो अपने देवता को अर्पण कर रहे हैं। लहू के पीने पर व्यवस्था में निश्चित तौर से प्रतिबंध है कि किसी पशु का लहू न पिए। लेकिन ये बड़ी ही दुखदाई बात है कि यहोवा विटनेस के अगुओं ने इस आज्ञा को खून चढ़वाने से जोड़ दिया कि रोगी को खून चढ़ाना बाइबल में मना है। और इस गलत अनुवाद के फलस्वरूप जो अगुओं की अनभिज्ञता से हुआ, वे हर वर्ष बहुत से लोगों को मार देते हैं, जैसे जोन्स घाना में मार गया था। सैकड़ों हजारों लोग हर वर्ष मरते हैं क्योंकि उन्होंने खून चढ़वाने से इनकार किया, क्योंकि वॉच टावर सोसाइटी के अनभिज्ञ अगुओं का कहना है कि खून चढ़वाने से आत्मा नरक में जाएगी, क्योंकि बाइबल कहती है कि लहू नहीं पीना। परंतु परमेश्वर अन्य जातीय व्यवहार के संदर्भ में कह रहा था जो उन दिनों प्रचलित था। जब वे एक पशु का बलिदान करते थे तब वे अपने देवता के सम्मुख उस लहू को लेकर पीते थे। इसी अभ्यास के संदर्भ में दाऊद कह रहा है, मैं उनके लहू वाले तपावन नहीं तपूंगा। ये दुखदाई है कि अंधे अंधों को गड्ढे में ले जा रहे हैं। मेरे मन में उन लोगों के लिए सहानुभूति है जो द्वार द्वार जाते हैं, क्योंकि वे अपने अगुओं के द्वारा चले गए हैं कि वे लोग ही परमेश्वर के सच्चे प्रतिनिधि हैं। वे अपने धर्म तंत्र की तरह ही नाश होने वाले हैं। सच्चाई केवल उनके पास ही है। भोले लोगों को छला गया है और वो द्वार द्वार जाकर इस भ्रम को फैला रहे हैं। उनके छल का प्रतिफल उनकी अनंत मृत्यु है। भजन 16 पद 5, यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है। मैं उनके लहू वाले तपावन नहीं तपूंगा, क्योंकि यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है। भजन 16 पद 5 और 7, मेरे बाट को तू स्थिर रखता है, मेरे लिए माप की डोरी मन भावने स्थान में पड़ी, और मेरा भाग मन भावना है। मैं यहोवा को धन्य कहता हूं, क्योंकि उसने मुझे सम्मति दी है, वरन मेरा मन भी रात में मुझे शिक्षा देता है। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सन्मुख रखा है, इसलिए कि वो मेरे दैने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। मैंने बहुत बार देखा है कि परमेश्वर मुझसे रात में बात करता है। जवानी के दिनों में मैं कभी याद नहीं रखता था जब रात को लेट जाता था। एक बार सो गया तो सुबह अलार्म बजने तक सोता ही रहता था। लेकिन जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ी, मैं पहले की तरह नहीं सोता था। अब एक आवाज मुझे रात को उठा देती है। मैं गर्मियों के कैंप शिविर में जवान बच्चों से कहता था, यदि तुम समझदार हो तो मेरे सोने तक प्रतीक्षा करोगे और फिर कैंप बंद करोगे तो मुझे पता भी ना चलेगा, लेकिन मुझे पहले सोने दो। वे सोचते थे कि मैं सो जाऊं और फिर वे कैंप शिवर को सर पर उठा लें। मुझे पता भी नहीं चलता था। मैं एक बार गहरी नींद में सो गया, तब फिर ऐसा कुछ नहीं जो मेरी नींद को खराब करे। लेकिन अब अवस्था बदल गई और बहुत से विषय हैं जो रात को मेरी नींद खराब करते हैं। मैं करवट बदलता और फिर सो जाता। लेकिन सुबह सुबह 3 बजे फोन की घंटी बजती, उसके बाद मुझे सोने में कठिनाई होती। मैं वहां लेटे करवटे बदलता रहता हूं, क्योंकि मैं गहरी नींद से जागा होता हूं और परेशान हो उठता हूं। लेकिन अब नहीं, अब मैं इसे महिमा का समय मानता हूं, क्योंकि अब मैं इस समय के दौरान परमेश्वर के साथ बातचीत करता हूं। वो रात में मुझसे कहता है, मैं अपना हृदय खोल दूं। और ये हैरान करने वाली बात है कि परमेश्वर रात में मेरे मन में अद्भुत विचार भर देता है। इसलिए अब मैं इसको अच्छा मौका समझता हूं और अनिद्रता वाली रात को शाप नहीं देता हूं। मैं इसे एक अच्छा मौका समझता हूं कि रात के समय में प्रभु से आदेश प्राप्त करूं। भजन 16 पद 8। मैंने यहोवा को निरंतर अपने सन्मुख रखा है, इसलिए कि वो मेरे दाहिने हाथ रहता है, मैं कभी न डगमगाऊंगा। अब हम वास्तव में एक भविष्यवाणी तक पहुंच रहे हैं। पत्रस ने ये पेंटिकोस्त के दिन कहा था, जब उन्हें चुनौती दी गई थी। उस समय बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और गलीली प्रेरित अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। तब उन पर आरोप लगाया कि वे तो नई मदिरा के नशे में हैं, अर्थात उन्होंने मदिरा पी रखी थी। और पत्रस ने कहा, जैसा तुम समझ रहे हो वे नशे में नहीं है, क्योंकि अभी तो पहर ही दिन चढ़ा है। परंतु ये वही बात है जो योवेल भविष्यद्वक्ता के द्वारा कही गई है। फिर वो भविष्यद्वक्ता का वचन उन्हें सुनाता है। वे लोग जो देख वो सुन रहे थे, उसका आत्मिक कारण समझाने के बाद पत्रस ने प्रचार करना आरंभ किया। प्रचार में यीशु मसीह का संदेश था। संदेश में 7 नुक्ते थे। वो उसकी पहचान से आरंभ करता है जिसके बारे में वो कहने जा रहा था, अर्थात यीशु नासरी के विषय में। वहां बहुत से यहूदी पुरुष थे जिनका नाम यीशु था। यीशु उनमें एक सामान्य नाम था, क्योंकि यहोशु एक राष्ट्र नायक था, वही जो उनको प्रतिज्ञा किए हुए देश में लाया था। इसका अर्थ है यहोवा ही उद्धार है। इसलिए बहुत सी यहूदी माताएं आशा रखती थी कि उनका बच्चा इसराइल को बचाने वाला हो, और इसलिए उन्होंने अपने लड़कों का नाम यहोशु रखा, जिसका अर्थ यूनानी में यीशु है। इसलिए उसकी पहचान के लिए यीशु के साथ नासरी शब्द जोड़ा गया था। उस स्थान पर शायद एक यीशु यरूशलेमी, एक यीशु बेथनियाई और एक यीशु बेथेली और एक यीशु समरियाई नाम के व्यक्ति थे। यीशु की पहचान थी यीशु नासरी, जिसने अपने ईश्वर होने के प्रमाण अपने आश्चर्य कामों और चमत्कारों के द्वारा तुम्हारे बीच में दिखाए, उसी को जब वो परमेश्वर की ठहराई हुई मनसा और होनहार के ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया, तो तुमने अधर्मियों के हाथ से उसे क्रूस पर चढ़वाकर मार डाला। परंतु उसी को परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर जिलाया। पत्रस के संदेश का मूल सत्य ये था कि वो जिलाया गया। यही नए नियम का मूल संदेश है, यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना। ये हमारे सारे मसीही अनुभव के लिए आशा का स्रोत और मूल है। यदि मसीह मुर्दों में से जी नहीं उठा, तो हमारा विश्वास करना व्यर्थ है, हमारी कोई आशा नहीं है। इसलिए मूल सच्चाई जो नए नियम का संदेश है, वो ये है कि वो मुर्दों में से जिलाया गया, अर्थात उसका पुनरुत्थान। अतः परमेश्वर को सत्य का केंद्र मिलता है और वो कहता है जिसको परमेश्वर ने मृत्यु के बंधनों से छुड़ाकर झिलाया, क्योंकि ये अनहोना था कि वो उसके वश में रहता। दाऊद कहता है क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। वो भजन पूरा करता है। भजन 16 पद 9 और 10। इस कारण मेरा हृदय आनंदित और मेरी आत्मा मगन हुई, मेरा शरीर भी चैन से रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। पत्रस ने इसे सीधे परमेश्वर की प्रतिज्ञा माना जो उसके बेटे के लिए थी, और निस्संदेह यीशु ने इसका उल्लेख किया और इसलिए पत्रस ने इसको जोड़ा है। ये यीशु के लिए परमेश्वर की प्रतिज्ञा थी, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। दाऊद के लिए मैं निश्चय ही कहूंगा वो एक भविष्यद्वक्ता था। वो अपनी ओर से नहीं परंतु उस आने वाले की ओर से कहता है और गवाही देता था कि परमेश्वर ने उसके प्राण अधोलोक में नहीं छोड़े और ना ही अपने पवित्र भक्त को सड़ने दिया। इस प्रकार परमेश्वर के दाहिने हाथ से सर्वोच्च पद पाकर और पिता से वो पवित्र आत्मा प्राप्त करके जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी, उसने वो उंडेल दिया है जो तुम देखते और सुनते हो। ये पवित्र आत्मा का वरदान है, क्योंकि उसने कहा, मैं पिता से प्रार्थना करूंगा, वो तुम्हारे लिए एक सहायक भेजेगा, अर्थात सत्य का आत्मा जो सदा तुम्हारे साथ बना रहेगा, जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए जो कुछ तुम देखते हो वो यीशु मसीह के पुनरुत्थान का फल है, और ये उसकी प्रतिज्ञा थी कि वो हमारे लिए पवित्र आत्मा को भेजेगा, परंतु वो अधोलोक में उतर गया परमेश्वर की इस प्रतिज्ञा के साथ कि वो उसके प्राण को अधोलोक में न छोड़ेगा। इसलिए जब यीशु मरा वो अधोलोक में, जिसे हम इब्रानी में शियोल कहते हैं, जिसका अनुवाद कब्र भी करते हैं, उसमें उतर गया। वो मेरे प्राण को अधोलोक, कब्र या नरक में न छोड़ेगा। यीशु मसीह के मरने से पहले अधोलोक यूनानी में हेडिस पृथ्वी के मध्य में एक स्थान है जो दो भागों में विभाजित किया गया था। यीशु मसीह हमें लूका के सुसमाचार अध्याय 16 में बताता है कि एक धनी मनुष्य और एक कंगाल मनुष्य था। कंगाल मनुष्य घावों से भरा हुआ था। उसको धनी मनुष्य के द्वार पर छोड़ दिया जाता था और कुत्ते आकर उसके घावों को चाटते थे। कंगाल मर गया और स्वर्ग दूतों ने उसे लेकर इब्राहिम की गोद में पहुंचाया। धनवान मनुष्य की भी मृत्यु हो गई और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से इब्राहिम की गोद में लाजर कंगाल मनुष्य को देखा और पुकार कर कहा, हे पिता इब्राहिम, मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे ताकि वो अपनी उंगली का सिरा पानी में भिगोकर मेरी जीभ को ठंडी करे, क्योंकि मैं इस ज्वाला में तड़प रहा हूं। इब्राहिम ने कहा, हे पुत्र, स्मरण कर कि तू अपने जीवन में अच्छी चीजें ले चुका है और वैसे ही लाजर बुरी वस्तुएं, परंतु अब वो यहां शांति पा रहा है और तू तड़प रहा है, और इन सब बातों को छोड़ हमारे और तुम्हारे बीच एक भारी गड्ढा ठहराया गया है कि जो यहां से उस पार तुम्हारे पास जाना चाहे वो ना जा सके और ना कोई वहां से इस पार हमारे पास आ सके। यदि वो मेरे पास नहीं आ सकता है तो मैं तुझसे विनती करता हूं, उसे मेरे पिता के घर भेज, क्योंकि मेरे 5 भाई हैं। ऐसा न हो कि वे भी इस पीड़ा की जगह में आए। इब्राहिम ने कहा, उनके पास भविष्यद्वक्ताओं की पुस्तक है, जब वे उनकी नहीं सुनते तो यदि मरे हुओं में से कोई जी भी उठे तो भी उसकी नहीं मानेंगे। यीशु हमें बताता है कि नरक पृथ्वी के गर्भ में है। एक दिन उन्होंने यीशु से कोई चिन्ह दिखाने को कहा। यीशु ने कहा, मती 12 अध्याय 39 और 40 पद, इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, परंतु योना भविष्यद्वक्ता के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उन्हें ना दिया जाएगा। योना 3 दिन जल जंतु के पेट में रहा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र 3 रात दिन पृथ्वी के भीतर रहेगा। ये चिन्ह प्रभु ने हमें दिया। पत्रस कह रहा है कि ये परमेश्वर की प्रतिज्ञा अपने पुत्र के लिए थी। ना तो उसका प्राण अधोलोक में छोड़ा गया और ना उसकी देह सड़ने पाई। पौलुस एफिसियों के 4 अध्याय में कहता है कि वे ऊंचे पर चढ़ा और बंधुआई को बांध ले गया, और उसके चढ़ने से वो पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था। जब यीशु कब्र से बाहर निकला तब वे लोग जो इब्राहिम के साथ वहां थे परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी होने की बात जो रहे थे, वे भी कब्रों से निकल आए। उसने उन्हें भी बंधुआई से छुटकारा दिया। आपको यशया की भविष्यवाणी याद होगी, अध्याय 61 में उसने कहा, प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंधुओं के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। वो मृत्यु के बंदीगृह के दरवाजे की बात कर रहा था, अर्थात हेडिस के बंधनों की। इब्रानियों की पुस्तक के 11 अध्याय में हमें पुराने नियम के भक्तों के बारे में बताया गया है, जिन्होंने विश्वास के द्वारा अद्भुत कार्य किए। इस अध्याय में कहा गया, वे सब विश्वास ही की दशा में मरे तो भी उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तु ना पाई। ये पुनरुत्थान और अनंत जीवन है, परंतु उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। वे स्वदेश की नेव की खोज में थे, उसका बनाने वाला परमेश्वर ही है। अध्याय के अंत में वो फिर कहता है, वे विश्वास ही की दशा में मरे तो भी उन्हें प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं न मिली, क्योंकि परमेश्वर ने हमारे लिए पहले से एक उत्तम बात ठहराई कि वे हमारे बिना सिद्धता को ना पहुंचे। जब तक यीशु ने क्रूस पर हमारे पापों के छुटकारे का प्रबंध नहीं किया था, तब तक वे स्वर्ग में सिद्धता के साथ नहीं आ सकते थे। पुराने नियम के बलिदान उनके पापों को ढांप सकते थे, परंतु ये अनहोना है कि बैल या बकरी का खून पापों को मिटा सके। वे बलिदान आने वाले बलिदान का गवाही मात्र थे, जो हमारे पापों के लिए यीशु मसीह का स्वयं का बलिदान था, जिसके द्वारा उसने सब मनुष्यों के लिए स्वर्ग का रास्ता खोल दिया। इसलिए पुराने नियम में जो लोग विश्वास से परमेश्वर की प्रतिज्ञा और उस प्रतिज्ञा के पूरे होने पर विश्वास करते थे, वे लोग नरक के एक तरफ से इब्राहिम के द्वारा दिलासा पा रहे थे और यीशु मसीह के पुनरुत्थान के साथ बंधुआई से छुड़ा लिए गए थे। पत्रस की पत्री में हम पढ़ते हैं कि यीशु ने अधोलोक में जाकर कैदी आत्माओं में प्रचार किया। तीन दिन और तीन रात यीशु उनको, जो विश्वासी इब्राहिम के साथ परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी होने की बात जोड़े थे, महान सुसमाचार सुनाता रहा। वो कितने आनंद का समय रहा होगा। जब वो स्वर्ग पर चढ़ा, उसने मृत्यु के बंधन तोड़ दिए और वो स्वर्ग पर चढ़ गया। उसने बंधुओं को बंधुआई से छुटकारा देकर मनुष्यों को वरदान दिया। यही बात पत्रस नए नियम में लिखता है। उसने कहा, दाऊद नबी होने के नाते अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता, उसकी कब्र आज भी हमारे बीच में है। वो यीशु के बारे में कह रहा था, जिसके हम गवाह हैं, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, ना अपने पवित्र भक्त को सड़ने देगा। भजन 16 पद 11। तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा, तेरे निकट आनंद की भरपूरी है, तेरे दाहिने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है। यीशु मसीह का ऊंचा स्थान पिता के दाहिने हाथ पर है। उसने कहा, अब से तुम मुझे ना देखोगे जब तक तुम मुझे पिता की दाहिनी ओर बैठा ना देखो। तेरे दाहिने हाथ सदा का आनंद है और तेरी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। परमेश्वर ने मुझे मृत्यु से बचा लिया है। तू मेरे प्राण को अधोलोक में ना छोड़ेगा, परंतु तूने मुझे जीवन का पथ दिखाया है, युग से की गई महिमामय प्रतिज्ञा। इब्रानियों 12 अध्याय 2 पद, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस का दुख सहा।